दूसरा इतिहास अध्याय एक। इसराइल राज्य की स्थापना के लिए दाऊद ने जो कुछ करना था वो सब कुछ किया। अब शेष बचा था परमेश्वर के भवन का निर्माण। आइए देखते हैं आगे क्या हुआ। दाऊद की मृत्यु के साथ साथ इसराइल के इतिहास का एक भाग समाप्त होता है। दूसरा इतिहास की पुस्तक राजा सुलेमान और उसके बाद के राजाओं का इतिहास है, विशेष करके यहूदा के राजाओं का। शायद इसराइल के राजाओं का भी इतिहास है जो हमारे पास नहीं है। पहला इतिहास मुख्यतः दाऊद के राज्य पर केंद्रित है, क्योंकि दाऊद के समय में राज्य अपनी चरम सीमा अर्थात महिमा और गरिमा में था। सुलेमान ने अपने पिता दाऊद के शासन काल में किए गए कार्यों के द्वारा सुनहरे राज्य की नींव रखी थी। उसने अपने राज्य में कदम रखते ही उसका लाभ उठाया। देखा जाए तो इसराइल राज्य का पतन सुलेमान के समय से ही जड़ पकड़ चुका था और वो शीघ्र ही दो भागों में विभाजित हो गया। सुलेमान की मृत्यु के बाद जब उसके पुत्र रहुबियाम ने राजकाज संभाला, इसी समय ये शक्तिशाली और महान साम्राज्य दो भागों में विभाजित हो गया और इतना अधिक दुर्बल हो गया था कि दाऊद और सुलेमान का राजकोष मिस्र के राजा शिशाक ने लूट लिया। कहने का अर्थ है कि राज्य की महिमा, शक्ति और ऐश्वर्य समाप्त हो गया। अतः जैसा कि हम दूसरा इतिहास की पुस्तक में यहूदा के राजाओं के बारे में पढ़ते हैं, अध्याय एक पद एक, दाऊद का पुत्र सुलेमान राज्य में स्थिर हो गया और उसका परमेश्वर यहोवा उसके संग रहा और उसको बहुत ही बढ़ाया। सुलेमान ने बड़ी महिमा में अपना शासन आरंभ किया, वो महिमा जो उसने अपने पिता से पाई थी, और यही नहीं परमेश्वर भी उसके साथ था क्योंकि उसका मन परमेश्वर में लगा हुआ था। सुलेमान ने लोगों को गिबोन में इकट्ठा किया क्योंकि तंबू उस समय गिबोन में था। इस समय दो तंबू थे, दाऊद ने एक और तंबू यरूशलेम में बनाया था क्योंकि वो वाचा के संदूक को यरूशलेम में लेकर आया था, परंतु राष्ट्र का आराधना केंद्र गिबोन में ही था क्योंकि वो तंबू और बलि की वेदी आरंभ से ही गिबोन में थी। अध्याय एक पद तीन और चार, और सुलेमान पूरी मंडली समेत गिबोन के ऊंचे स्थान पर गया क्योंकि परमेश्वर का मिलाप वाला तंबू जिसे यहोवा के दास मूसा ने जंगल में बनाया था वो वहीं पर था, परंतु परमेश्वर के संदूक को दाऊद किर्यात यारीम से उस स्थान पर ले आया था जिसे उसने उसके लिए तैयार किया था। उसने तो उसके लिए यरूशलेम में एक तंबू खड़ा कराया था। पद छे, और सुलेमान ने वही उस पीतल की वेदी के पास जाकर जो यहोवा के सामने मिलाप वाले तंबू के पास थी उस पर 1000 होम बलि चढ़ाए। 1000 होम बलि चढ़ाने का अर्थ है बहुत अधिक खर्चा। इसका अर्थ यह हुआ कि सुलेमान बहुत खर्चीला व्यक्ति था। अध्याय एक पद सात, उसी दिन रात को परमेश्वर ने सुलेमान को दर्शन देकर उससे कहा, जो कुछ तू चाहे मैं तुझे दूंगा, वो मांग। ये परियों की कहानी के समान है जहां उनकी रानी कहती है, तुम्हें क्या मांगना है मांगो। मुझे तो आश्चर्य होगा यदि परमेश्वर मेरे पास आकर कहे, मांगो, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं। मुझे आश्चर्य होता है कि मैं क्या मांगूंगा, मेरी विनती क्या होगी। मैं इस पर ध्यान करते हुए सोचता हूं कि मैं सीधा उससे ये कहूंगा, प्रभु तू जो चाहे वो मुझे दे दे, क्योंकि हो सकता है जो परमेश्वर मुझे देना चाहता है मैं उससे बहुत कम मांगू। वो मुझसे इतना अधिक प्रेम करता है कि वो मुझे बहुत देना चाहता है, और मैं कहूंगा, प्रभु मैं 1,000 रुपए पाना चाहता हूं, और वो मुझे 10 लाख रुपया देना चाहता हूं, मैं क्यों उसको कम करूं? मेरे विचार में हम परमेश्वर के प्रेम को समझ नहीं पाते कि वो हमारे लिए क्या करना चाहता है। रोमियो की पत्री 8:32, जिसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा परंतु उसे हम सबके लिए दे दिया, वो उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों कर न देगा। ध्यान दे, परमेश्वर ने हमारे लिए क्या दिया है उसकी प्रतीति करें। उसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा, और यदि उसने हमारे लिए अपने पुत्र को भी दे दिया तो वो और अन्य सब कुछ क्यों नहीं देगा? यीशु ने कहा, अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा। यूनानी में मांगों का बड़ा गहरा अर्थ है। इसका अनुवाद है, देखिए, यूहन्ना 16:24, मांगो तो तुम पाओगे ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है, वो आपके जीवन को आशीषित करना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन को एक साधन बनाना चाहता है ताकि हमारे चारों ओर के संसार परमेश्वर की सेवा करने के आनंद और आशीष को जाने। इसलिए परमेश्वर की इच्छा हमें देने की होती है, वरन वो देकर प्रसन्न भी होता है। जो कुछ तू चाहे कि मैं तुझे दूं, वो मांग। अध्याय 1:8-10। सुलेमान ने परमेश्वर से कहा, तू मेरे पिता दाऊद पर बड़ी करुणा करता रहा और मुझको उसके स्थान पर राजा बनाया है। अब हे यहोवा परमेश्वर, जो वचन तूने मेरे पिता दाऊद को दिया था वो पूरा हो। तूने तो मुझे ऐसी प्रजा का राजा बनाया है जो भूमि की धूली के किनकों के समान बहुत है। अब मुझे ऐसी बुद्धि और ज्ञान दे कि मैं इस प्रजा के सामने अंदर बाहर आना जाना कर सकूं, क्योंकि कौन ऐसा है कि तेरी इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कर सके? सुलेमान की विनती, बुद्धि और ज्ञान, ताकि मैं तेरी प्रजा के सामने अंदर बाहर आना जाना कर पाऊं, क्योंकि तेरी प्रजा पर शासन करने का बोझ मेरी क्षमता के परे है। इसलिए हे पिता, मुझे बुद्धि और ज्ञान दिया जाए कि मैं तेरा कार्य कर सकूं। वास्तव में वो कार्य जो प्रभु तू मुझसे कराना चाहता है उसको करने की बुद्धि और समझ मुझे मिले। कैसी सुंदर विनती है। आगे के अध्ययनों में हम देखेंगे तो पाएंगे कि नबी आसा राजा के पास आता है और कहता है, दूसरा इतिहास 16:9, देख, यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है उनकी सहायता में वो अपना सामर्थ दिखाए। यहां सुलेमान परमेश्वर के सामने अपने संपूर्ण हृदय को रख देता है। जो कुछ तू चाहे कि मैं तुझे दूं, वो मांग। प्रभु, मैं मशहूर होना चाहता हूं, मैं अपने पद चिन्ह बड़ी बड़ी जगहों में देखना चाहता हूं, मैं धनी होना चाहता हूं। नहीं, उसने कहा, प्रभु तूने एक विशाल उत्तरदायित्व मुझ पर डाला है, तूने अपने लोगों पर मुझे मेरे पिता के स्थान पर राजा ठहराया है। परमेश्वर, मुझे बुद्धि और ज्ञान चाहिए ताकि मैं जानूं कि तेरा कार्य कैसा पूरा किया जाए। अध्याय 1:11-17। परमेश्वर ने सुलेमान से कहा, तेरी जो ऐसी ही मनसा हुई, अर्थात तूने ना तो धन संपत्ति मांगी, ना ऐश्वर्य, ना अपने बैरियों का प्राण और ना अपनी दीर्घायु मांगी, केवल बुद्धि और ज्ञान का वर मांगा है जिसे तू मेरी प्रजा का जिसके ऊपर मैंने तुझे राजा नियुक्त किया है न्याय कर सके। इस कारण बुद्धि और ज्ञान तुझे दिया जाता है और मैं तुझे इतना धन संपत्ति और ऐश्वर्य दूंगा जितना ना तो तुझसे पहले किसी राजा को मिला और ना तेरे बाद किसी राजा को मिलेगा। तब सुलेमान गिबोन के ऊंचे स्थान से अर्थात मिलाप वाले तंबू के सामने से यरूशलेम को आया और वहां इसराइल पर राज्य करने लगा। फिर सुलेमान ने रथ और सवार इकट्ठे कर लिए और उसके 1400 रथ और 12,000 सवार थे और उनको उसने रथों के नगरों में और यरूशलेम में राजा के पास ठहरा रखा। और राजा ने ऐसा किया कि यरूशलेम के सोने चांदी का मूल्य बहुतायत के कारण पत्थरों का सा और देवदारों का मूल्य नीचे को देश के गुलरों का सा बना दिया। और जो घोड़े सुलेमान रखता था वे मिस्र से आते थे और राजा के व्यापारी उन्हें झुंड के झुंड ठहराए हुए दाम पर लिया करते थे। एक रथ जो 600 शकेल चांदी पर और एक घोड़ा 150 शकेल पर मिस्र से आता था और इसी दाम पर वे हितियों के सब राजाओं और आराम के राजाओं के लिए उन्हीं के द्वारा लाया करते थे। दूसरे शब्दों में वे घोड़ों के व्यापारी हो गए। वे आसपास के देशों में हिती आराम आदि देशों में घोड़े बेचने लगे। ये बड़ी रोचक बात है कि सुलेमान ने आरंभ में ही मिस्र के साथ घोड़ों का व्यापार आरंभ कर दिया था। इस प्रकार वो राष्ट्र के विनाश का बीज बो रहा था। व्यवस्था विवरण अध्याय 17 पद 14 में परमेश्वर ने राजाओं के संबंध में मूसा को निर्देश दिए थे। देखिए व्यवस्था विवरण 17 अध्याय 14 और 16 पद। जब वे प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश कर ले और प्रजा ये मांग करे कि उन्हें अन्य जातियों की तरह राजा चाहिए, तब जो भी राजा हो वो अपने लिए घोड़े एकत्रित न करे और न ही वे किसी कारण मिस्र की ओर निहारे, विशेष करके घोड़ों के संबंध में। अब आप पूछेंगे कि परमेश्वर को घोड़ों से क्या शिकायत थी? कुछ भी नहीं, उसने घोड़ों को बनाया था। परंतु उन दिनों में घोड़े युद्ध के निर्णायक एवं निश्चित साधन होते थे। सेना की शक्ति घोड़ों की संख्या से आंकी जाती थी। घुड़सवार सैनिक के पास निश्चय ही युद्ध लाभ का स्थान होता था और रथ युद्ध में भय का कारण माना जाता था, जैसे आज टैंक। यही कारण था कि परमेश्वर नहीं चाहता था कि वे घोड़ों पर भरोसा रखे। भजन संहिता में लिखा है, भजन संहिता 33:17 पद, बच निकलने के लिए घोड़ा व्यर्थ है, अर्थात विश्वास करने के लिए। देखिए भजन संहिता में किसको विश्वास योग्य माना गया है। भजन संहिता 20:7 पद, किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे। इस प्रकार अनेक भजन हैं जिनमें ये दिखाया गया कि मनुष्य घोड़ों में भरोसा रख चुका था। इस विषय पर बहुत से भजन लिखे गए हैं क्योंकि लोग घोड़ों पर भरोसा करते थे। सुलेमान ने घोड़ों को बड़ी संख्या में जमा करना आरंभ किया। बाइबल आलोचकों ने इसका लाभ उठाया। यहां ये भी बताया गया है कि कैसे उसने विभिन्न शहरों में गुड़शालाएं बनवाई और वहां घोड़े रखे। उन शहरों की खुदाई पर जिन्हें दाऊद ने बनाया था हमें गुड़शालाएं मिली है। मगीदो शहर की खुदाई में जो सुलेमान के समय बसाया गया था हमें ऐसे पत्थर मिले हैं जो काटकर घोड़ों के पानी पीने और चारा खाने के लिए उपयोग किए गए थे। वे आज भी वहां बहुतायत में हैं। इसे बाइबल का ये विवरण कि सुलेमान ने बड़ी संख्यों के घोड़े जमा किए थे सही सिद्ध होता है। उस समय से ये मानसिकता उत्पन्न हुई कि सेना में एक निश्चित संख्या में घोड़ों का होना आवश्यक है। ये मेरे लिए आश्चर्य की बात तो है कि सुलेमान ने शीघ्र ही परमेश्वर के आदेशों की अवज्ञा की और एक ऐसा बीज बो दिया जो अंततः राज्य के पतन का कारण सिद्ध हुआ।